इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक, जिसे पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बनना था, वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी को एक विदेशी राजा के हरम में धकेल देता है।
हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है।
बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी खलनायक की कहानी नहीं है, ये अब्राहम की कहानी है। मतलब जब भी हम किसी महान व्यक्ति की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक एकदम परफेक्ट छवि उभरती है ना, जहाँ सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हो।
सही कहा, हम अक्सर नायकों को बिना किसी खामी के देखना पसंद करते हैं।
हाँ, लेकिन असल जिंदगी की यात्राएं, खासकर वो जो हमें अंदर से बदल देती हैं, वो इतनी आसान या साफ सुथरी नहीं होती। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज द्वारा जेनेसिस यानी उत्पत्ति के 11वें सत्र के व्याख्यान नोट्स हैं,
जो कि बहुत ही गहराई से लिखे गए नोट्स हैं।
बिल्कुल। और आज हमारा मुख्य मिशन ये खोजना है कि कैसे किसी व्यक्ति की भौतिक यात्राएं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का सफर, असल में उसकी आंतरिक और आध्यात्मिक यात्राओं का रूपक बन जाती हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ प्राचीन इतिहास का कोई पाठ नहीं है।
हाँ, ये सर पुरानी बातें दोहराना नहीं है।
एकदम सही। ये समझने के बारे में है कि कैसे अपने आराम के क्षेत्रों को छोड़ना, अपनी सबसे गहरी मानवीय कमजोरियों का सामना करना और अज्ञात में कदम रखना ही व्यक्तिगत विकास का रास्ता है।
बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा की विशालता को समझने के लिए मैं कहूंगा कि हमें पहले उस समय के भूगोल को थोड़ा समझना होगा।
हाँ, क्योंकि संदर्भ बहुत जरूरी है।
ठीक कहा। तो कहानी अब्राहम से शुरू होती है, जो अपने पिता तेरा के साथ उर शहर से निकलता है। अब उर कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, ये प्राचीन बेबीलोन के दक्षिण में एक बहुत ही विकसित और सुरक्षित शहर था।
मतलब वो एक काफी आरामदायक जगह पे था।
हाँ बिल्कुल। और वहां से वे हारान तक जाते हैं, जो आज के दक्षिणी पूर्वी तुर्की में है। ये लगभग 600 मील का सफर था, और फिर हारान से कनान के मध्य भाग तक की यात्रा, जो 400 मील और लंबी थी।
बापरे, 1000 मील।
हाँ, और प्राचीन दुनिया में ये दूरी तय करना सिर्फ थका देने वाला नहीं था, बल्कि ये जानलेवा था। रास्ते में लुटेरे, जंगली जानवर, अकाल।
रुकिए, ये हिस्सा मुझे हमेशा हैरान करता है। जेनेसिस 12 के अनुसार, जब अब्राम को ये सब छोड़कर जाने का बुलावा आता है, तब वो 75 वर्ष का था।
हाँ, 75 साल की उम्र में।
मतलब आज के समय में जब कोई इंसान 75 साल का होता है, तो वो रिटायरमेंट की शांति खोजता है, अपनी कुर्सी पर बैठकर बस आराम करना चाहता है। और ये आदमी, ये 1000 मील से ज्यादा का सफर पैदल तय करने निकल पड़ा,
और वो भी बिना किसी स्पष्ट गंतव्य के।
एग्जैक्टली। बिना किसी नक्शे के, एक पूरी तरह से अज्ञात दिशा में। ये तो विश्वास से ज्यादा पागलपन लगता है मुझे।
खैर, ये पागलपन ही लगता अगर इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य ना होता। डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ एक बहुत ही शानदार तुलना करते हैं। वे अब्राहम के इस कदम को बेबल की मीनार की घटना के ठीक विपरीत रखते हैं।
ओह, बेबल की मीनार, जहाँ सबने एक ही भाषा बोली थी।
हाँ, बेबल की मीनार का निर्माण क्यों हुआ था? मानव जाति ने एक जगह इकट्ठा होकर एक ऊंची मीनार बनाने का फैसला किया था। ये दरअसल एक गहरे मनोवैज्ञानिक डर और घमंड का परिणाम था। इंसान नहीं चाहता था कि वो बिखरे।
मतलब वे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे।
बिल्कुल, वे एक ब्रांड बनाना चाहते थे। ये एक तरह का जबरदस्त एक रूपता थोपने का प्रयास था, जहां सब अपनी सुरक्षा की दीवारों के पीछे छिप सकें।
तो बेबल की मीनार मूल रूप से सुरक्षा और एक ही जगह सिमट जाने का प्रतीक थी।
ठीक कहा आपने। लेकिन परमेश्वर की मूल योजना मानवता के लिए ये थी कि वे पूरी पृथ्वी पर फैलें और आबाद हों। बेबल उस योजना के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। इसलिए जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, तो वो बेबल के उस सिमटने वाले रवैये का सीधा जवाब है।
अच्छा, तो अब्राहम को फैलने के लिए बुलाया जा रहा था।
हाँ, अब्राहम को अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलने और दुनिया भर के लिए एक आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर मैथ्यूज के अनुसार जेनेसिस 12 में अब्राहम को तीन बहुत ही स्पष्ट वादे मिलते हैं। पहला, एक नई जमीन। दूसरा, एक महान राष्ट्र बनने का वादा, और ये उस व्यक्ति से कहा जा रहा है जिसकी पत्नी सारा बांझ है और वे दोनों बुढ़ापे में हैं। और तीसरा वादा था अपार भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का।
ये बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो खुद को महफूज रखने के लिए दीवारें और मीनारें बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इंसान है जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ रहा है।
बिल्कुल।
अगर मैं इसे थोड़ा और खोलते हुए एक आसान तरीके से समझाऊं, तो ये जैसे एक सुरक्षा जाल के संकेंद्रित वृत्तों को तोड़ने जैसा है।
संकेंद्रित वृत्त मतलब एक के अंदर एक घेरे।
हाँ, इंसान के सुरक्षा जाल की कई परतें होती हैं ना, सबसे बाहरी परत उसकी जमीन या देश है, उसके अंदर की परत उसका समाज या कबीला है, और सबसे अंदरूनी, सबसे सुरक्षित परत उसका अपना परिवार और पिता का घर होता है।
ये बहुत ही सटीक उपमाएं।
और अब्राहम इन सभी परतों को एक एक करके तोड़ रहा है। वो अपना घर छोड़ता है, शेकेम जाता है, फिर बेथिल जाता है और वेदियों का निर्माण करता है। लेकिन मुझे एक बात खटकती है।
क्या?
क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? किसी अदृश्य वादे के सहारे अपने जीवन की हर एक सुरक्षा को दांव पर लगा देना, इस स्तर का विश्वास काम कैसे करता है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। इस स्तर का विश्वास तब काम करता है जब आप वादे की शर्तों से ज्यादा वादा करने वाले के चरित्र पर भरोसा करते हैं। अब्राहम के पास सच में कोई नक्शा नहीं था,
बस कुछ शब्द थे,
कोई व्यापारिक लेन देन नहीं था। अब्राहम को सिर्फ कदम आगे बढ़ाना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो आशीर्वाद उसे मिलने वाला था वो उसकी अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं था।
तो फिर किसके लिए था?
अब्राहम को एक माध्यम, या कह सकते हैं एक आशीर्वाद का जरिया, एक फनल बनना था। योजना ये थी कि भविष्य में पूरी दुनिया के लोग उसके इस विश्वास वाले मार्ग से जुड़कर अनुग्रह का हिस्सा बन सकें।
ओ, तो वो पूरी मानवता के लिए एक पुल का काम कर रहा था।
बिल्कुल।
तो यहाँ तक की कहानी तो एक नायक की शानदार आध्यात्मिक उड़ान लगती है। वो आराम के क्षेत्र से बाहर निकलता है, विश्वास का बड़ा कदम उठाता है। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो पूरी तरह से चकरा देने वाला है।
मिस्र वाला हिस्सा।
हाँ, ये वही महान विश्वास वाला व्यक्ति है जो अचानक कनान में अकाल पड़ने पर मिस्र की ओर भागता है, और मिस्र की सीमा में प्रवेश करते ही अचानक अब्राहम का सारा विश्वास गायब हो जाता है।
वो डर जाता है,
बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपनी जान का इतना डर सताने लगता है कि वो अपनी ही पत्नी सारा से कहता है कि वो खुद को उसकी बहन बताए। मतलब ये मानवीय खामी बहुत चौंकाने वाली है। जो आदमी बिना नक्शे के आ गया, वो अचानक इतना डरपोक कैसे हो गया?
मैं मानता हूँ कि अजीब लगता है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यू स्पष्ट करते हैं कि अब्राहम का डर पूरी तरह से आधारहीन नहीं था। अगर हम प्राचीन मध्य पूर्व के नैतिक कोड को देखें तो वे बहुत क्रूर हुआ करते थे।
क्रूर किस तरह से?
उस समय अगर किसी शक्तिशाली राजा या फिरौन को कोई विवाहित स्त्री पसंद आ जाती तो वे समाज के नियमों के कारण सीधे दूसरे की पत्नी को नहीं अपनाते थे। वे इसका एक खौफनाक कानूनी रास्ता निकालते थे। वे पति की हत्या करवा देते थे।
ओह माय गॉड।
हाँ, पति के मरने के बाद वो स्त्री विधवा हो जाती और फिर राजा उसे सहारा देने के नाम पर अपने हरम में शामिल कर लेता। अब्राहम इस क्रूर व्यवस्था को जानता था, इसलिए उसका डर हावी हो गया
और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को खतरे में डाल दिया। और फिर ऑन वास्तव में सारा की सुंदरता के कारण उसे अपने हरम में ले भी लेता है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक ताकतवर राजा के लालच की कहानी है, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स ने मेरा नजरिया बदल दिया।
हरम की राजनीतिक सच्चाई के बारे में?
हाँ, हरम सिर्फ कामुकता के लिए नहीं था ना?
बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में राजाओं का हरम एक बहुत ही जटिल राजनीतिक और कूटनीतिक संस्था थी। हरम में महिलाओं को शामिल करना राजनीतिक गठबंधन बनाने और अपनी वंशावली सत्ता को मजबूत करने का एक तरीका था।
तो फिरौन सारा को हरम में लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था।
हाँ, लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो यहाँ सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर सारा उस हरम में किसी मिस्री बच्चे की माँ बन जाती तो परमेश्वर का वो वादा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता।
वो वादा कि अब्राहम और सारा के माध्यम से एक नया राष्ट्र जन्म लेगा।
एकदम सही। अब्राहम की मानवीय कमजोरी ने पूरे दैवीय वादे को पतन के कगार पर ला खड़ा किया था, और चूंकि अब्राहम ने वादे की रक्षा नहीं की, इसलिए खुद परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। वादे को बचाने के लिए फिरौन और उसके घराने पर गंभीर बीमारियां भेजी गईं,
ताकि सारा सुरक्षित रहे। और फिर फिरौन को सच्चाई पता चलती है, वो बहुत क्रोधित होता है और अब्राहम को अपार धन, सोना चांदी, मवेशी देकर देश से बाहर निकाल देता है।
क्या आपको नहीं लगता कि ये घटना भविष्य की किसी बड़ी घटना का पूर्वाभास है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डॉक्टर मैथ्यूज इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये घटना भविष्य की एक बड़ी तस्वीर यानी निर्गमन या एक्सोडस का ट्रेलर है।
कैसे? देखिए, बाद में याकूब और यूसुफ के समय में भी कनान में अलकाल पड़ेगा। इजरायली भोजन के लिए मिस्र जाएंगे, फिर परमेश्वर मिस्रियों पर विपत्तियां यानी प्लेग भेजेगा, और अंत में वे मिस्र के भारी धन के साथ वापस लौटेंगे। इतिहास खुद को दोहराने वाला था।
क्या बात है, ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है। खैर, अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अब्राहम मिस्र से जान बचाकर तो आ गया और दौलत भी ले आया, लेकिन यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। ये वही दौलत उसका अगला सबसे बड़ा संकट बन गई,
समृद्धि का अभिशाप।
हाँ, अकाल ने उसे नहीं तोड़ा, लेकिन समृद्धि ने लगभग उसके परिवार को तोड़ दिया। दोनों के चरवाहों के बीच झगड़े शुरू हो गए
संसाधनों की कमी के कारण। अब्राहम और उसके भतीजे लूत के पास इतने मवेशी हो गए थे कि चारा का कम पड़ने लगे।
अगर मैं इसकी तुलना आज के समय से करूं, तो ये ऐसा है जैसे एक बिजनेस स्टार्टअप के दो संस्थापक हैं। वे मुश्किल समय में तो एक साथ थे, लेकिन जैसे ही कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाया, वे पावर और पैसे को लेकर आपस में लड़ पड़े।
और मजे की बात यह है कि वे अकेले नहीं थे।
बिल्कुल, उस जमीन पर कनानी और परिज्जी लोग भी रह रहे थे। वे उनके क्रूर प्रतिद्वंदी थे जो इस पारिवारिक तमाशे को देख रहे थे और उनके पतन का इंतजार कर रहे थे।
ऐसे शत्रुतापूर्ण माहौल में ये फूट विनाशकारी हो सकती थी, लेकिन यहाँ अब्राहम अनुग्रह दिखाता है। वो मुखिया होने के बावजूद लूत को जमीन चुनने देता है,
और लूत लालच में आकर सुदोम के पास जॉर्डन के उपजाऊ मैदान को चुनता है।
हाँ, डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ पॉल के कुलूसियों के पत्र का जिक्र करते हैं, जहाँ लालच को मूर्ति पूजा बताया गया है। लूत ने अपनी इच्छाओं को इतना ऊपर रख दिया कि उसने खुद को ही मूर्ति बना लिया।
लेकिन लूत को अलग क्यों होना पड़ा?
इसे समझने के लिए हमें जेनेसिस में चलने वाले अलगाव के सिद्धांत को समझना होगा।
अलगाव का सिद्धांत?
हाँ, जेनेसिस में ये विषय बार बार आता है। जैसे शुरुआत में आकाश को पृथ्वी से अलग किया जाता है, फिर काइन की हिंसक वंशावली को सेठ से अलग किया जाता है, बाद में इश्माएल को इसहाक से, और अब अब्राहम को लूत से।
तो ये अलगाव उस शुद्ध वंशावली को अलग कर रहा था जिसके माध्यम से वादा पूरा होना था।
बिल्कुल, लूत उस दैवीय योजना का भार हमें ही उठा सकता था।
समझ गई, लेकिन लूत का ये स्वार्थी चुनाव उसे भारी पड़ता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बीच में धकेल दिया जाता है। पूर्वी राजाओं का गठबंधन पश्चिमी राजाओं को हरा देता है, जिनमें सदोम का राजा भी था, और लूत बंदी बना लिया जाता है।
और तब अब्राहम अपने भतीजे को बचाने आता है। दिलचस्प बात यह है कि यही पहली बार पाठ में अब्राहम को इब्रानी कहा गया है।
इब्रानी, इसका यहाँ क्या मतलब है?
शायद वो एबर का वंशज था, या इसका अर्थ है बाहरी या नदी पार करने वाला यात्री। ये उसकी पहचान पुख्ता करता है।
वो एक सेना तैयार करता है और उत्तर में दान शहर तक पीछा करके लूत और सारी संपत्ति वापस लाता है।
डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स में ये भी है ना कि दान नाम का उल्लेख एक संपादक द्वारा बाद में पाठकों की सुविधा के लिए किया गया था, क्योंकि दान का जन्म तब तक हुआ नहीं था। ये सिर्फ भूगोल समझाने के लिए था। तो जब अब्राहम युद्ध जीत कर लौटता है, तो दो राजा उससे मिलते हैं, सोदोम का राजा और सलेम यानी यरूशलेम का राजा मलकीसेदेक।
तो इस सब का क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि अब्राहम ने मलकीसेदेक नाम के इस अजनबी कनानी राजा से रोटी और शराब स्वीकार की और उसे अपनी संपत्ति का दसवां हिस्सा भी दे दिया।
दशमांश? हाँ
हाँ,
लेकिन सोदोम के राजा द्वारा दी गई अपार संपत्ति को उसने पूरी तरह ठुकरा दिया। ऐसा क्यों?
क्योंकि मलकीसेदेक कोई साधारण राजा नहीं था। वो एक रहस्यमय व्यक्ति है जो सर्वोच्च परमेश्वर यानी एल एलियोन की पूजा करता है।
ओह, तो वे एक ही परमेश्वर को मानते थे।
बिल्कुल, अब्राहम ने उसकी रोटी इसलिए स्वीकार की क्योंकि उनका आध्यात्मिक जुड़ाव था, लेकिन उसने सोदोम के राजा की संपत्ति को इसलिए ठुकरा दिया ताकि कोई मूर्ति पूजक राजा ये दावा न कर सके कि उसने अब्राहम को अमीर बनाया है।
मतलब वो इसका पूरा श्रेय केवल यहोवा को देना चाहता था। एकदम सही। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि मलकीसेदेक का ये रहस्यमयी चरित्र बाद में भजन संहिता और इब्रानियों की पुस्तक में मसीह के समानांतर के रूप में उपयोग किया गया।
ये बहुत ही अद्भुत है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें, तो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, वे समझ सकते हैं कि अब्राहम की यात्रा कोई सीधी ऊपर की ओर जाती हुई रेखा नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव थे।
हाँ, ये विश्वास, डर, मानवीय गलतियों और अनुग्रह का एक बहुत ही जटिल मिश्रण थी। हमारी अपनी जिंदगी की यात्राओं में भी भौतिक बदलाव अक्सर हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाते हैं।
सही कहा, आराम के क्षेत्रों को छोड़े बिना कोई विकास नहीं होता।
जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे इस एक बात पर जरूर विचार करें। मलकीसेदेक एक इब्रानी नहीं था, वो अब्राहम के परिवार का हिस्सा भी नहीं था।
हाँ, वो एक बाहरी व्यक्ति था।
फिर भी वह उसी एक सच्चे परमेश्वर को जानता था और उसकी पूजा करता था। अगर परमेश्वर चुने हुए राष्ट्र के अस्तित्व में आने से पहले ही बाहरी लोगों के माध्यम से काम कर रहा था तो यह हमें सत्य के बारे में क्या बताता है?
यह एक बहुत ही गहरा सवाल है।
शायद यह बताता है कि सत्य और ज्ञान किसी एक समूह की जागीर नहीं है, वे अप्रत्याशित और रहस्यमयी जगहों पर भी पनप सकते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।